डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट साहित्य, व्याख्यान 3, धार्मिक और सामाजिक मूल्य। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन द्वारा लिखित न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों पर व्याख्यान 3। डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और शुरुआत करें। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर आज मैं जो करना चाहता हूं वह मोटे तौर पर नए नियम के समय तक की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमारी चर्चा को समाप्त करना है, जिसमें नए नियम का समय भी शामिल है। और फिर मैं राजनीतिक माहौल से हटकर धार्मिक माहौल के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। पहली सदी की दुनिया में जड़े जमाना शुरू करते समय ईसाई धर्म ने किन प्रतिस्पर्धी धार्मिक विचारधाराओं के साथ प्रतिस्पर्धा की, और इसलिए हम धार्मिक रूप से कई विकल्पों पर गौर करेंगे। हालांकि आप जल्द ही देखेंगे कि पहली शताब्दी में राजनीति और धर्म के बीच अंतर करना कुछ हद तक कृत्रिम है। राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति को अलग करने के लिए दोनों को बहुत बारीकी से जोड़ा गया था। लेकिन आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर हम नए नियम के लेखन के परिवेश और पृष्ठभूमि प्रकार की पृष्ठभूमि और अग्रभूमि को देखना जारी रखेंगे। पिता, अब मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इतिहास, पृष्ठभूमि और पहली शताब्दी के दौरान और नए नियम के लेखन से पहले क्या चल रहा था, उससे संबंधित मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करें। हम ऐसा केवल एक अकादमिक अभ्यास को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इस उम्मीद से करते हैं कि हम बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे और हमारे पास आपके रहस्योद्घाटन को और अधिक गहन तरीके से पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि होगी। हमें उस स्थिति की अधिक सराहना और समझ होगी जिसमें आपने मूल रूप से स्वयं को प्रकट किया था, ताकि हमें इस बात की अधिक सराहना और समझ हो सके कि वह शब्द आज भी आपके लोगों के रूप में हमसे कैसे बात करता है। तो हम यह कक्षा आपको सौंपते हैं। हम हमारे साथ आपकी उपस्थिति और इन चीजों को स्पष्ट रूप से सोचने और समझने में आपकी सहायता चाहते हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, तथास्तु। ठीक है, पिछली कक्षा की अवधि में हमने विशेष रूप से रोमन शासन के महत्व के बारे में थोड़ी राजनीतिक बात करके अपनी बात समाप्त की। इस मानचित्र का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि लाल रेखा मोटे तौर पर रोमन शासन, पहली शताब्दी के रोमन साम्राज्य की सीमा का संकेत है। ताकि कोई भी चीज उसकी शक्ति, उसके प्रभाव से बच न जाए। हमने यूनानीकरण की प्रक्रिया के बारे में थोड़ी बात की, जिसे आप रोमन साम्राज्य के प्रसार से पहले याद करते हैं। हेलेनाइजेशन वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा हम सिकंदर महान की ग्रीक प्रभाव, ग्रीक सोच, ग्रीक संस्कृति और ग्रीक भाषा को दुनिया भर में फैलाने की प्रक्रिया को यह नाम देते हैं। लेकिन सिकंदर की खोज के बाद और संघर्ष की एक और अवधि के बाद क्षितिज पर उभरती अगली महाशक्ति रोम थी, और इस प्रकार रोम जल्द ही फैल गया और इसमें एक ऐसा साम्राज्य शामिल हो गया जो सिकंदर से भी आगे निकल गया, और इसलिए रोम उस समय की महाशक्ति था। आप इसके प्रभाव और प्रभाव से बचने के लिए वस्तुतः कहीं नहीं रह सकते। इसलिए यरूशलेम, यहां तक कि फिलिस्तीन की भूमि, भगवान के लोगों की भूमि भी रोमन साम्राज्य और रोमन शासन के प्रभाव और शक्ति से बच नहीं सकी। तो इस तरह के माहौल में यहूदियों और ईसाइयों दोनों को समान रूप से जिन चीजों से जूझना पड़ा, उनमें से एक यह है कि विदेशी शासन और उत्पीड़न के संदर्भ में रहते हुए भगवान के लोग होने का क्या मतलब है। बुतपरस्त और रोमन शासन के बीच हम परमेश्वर के लोगों के रूप में अपनी पहचान कैसे बनाए रख सकते हैं। परमेश्वर के लोग होने का क्या अर्थ है और हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हम परमेश्वर के उन वादों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जो अधूरे प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमने पिछली कक्षा की अवधि में कहा था, पुराने नियम में महत्वपूर्ण अनुबंधों और वादों में से एक यह वादा था कि ईश्वर डेविड के वंश के एक राजा के माध्यम से अपने लोगों और सृष्टि पर अपना शासन बहाल करेगा। और अब जैसे कि परमेश्वर के लोग चारों ओर देखते हैं, सिंहासन पर बैठे दाऊद के वंश के पुत्र के बजाय हमारे पास सीजर है, जो एक बुतपरस्त शासक है, जो संपूर्ण बसे हुए संसार पर शासन कर रहा है। इसका परमेश्वर के वादों पर क्या प्रभाव पड़ता है? परमेश्वर के लोगों के रूप में इससे हमें क्या लाभ होता है? क्या ईश्वर अपने वादे पूरे करेगा या हम उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? और मेरा मानना है कि न्यू टेस्टामेंट का अधिकांश भाग इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है कि भगवान के लोगों के रूप में जीवन जीने का क्या मतलब है, जिन्होंने अभी तक भगवान के वादों को पूरा होते नहीं देखा है, बल्कि एक अर्थ में उन वादों को बुराई देखकर विरोधाभासी देखा है। दुनिया में बुराई देखकर, एक विदेशी शासक को देखकर, जिसके उद्देश्य और योजनाएं भगवान के उद्देश्यों और योजनाओं के प्रतिकूल हैं, उसके प्रकाश में परमेश्वर के लोगों के रूप में जीने का क्या मतलब है? अब राजनीतिक माहौल के अलावा, जैसा कि मैंने कहा, मैं पहली सदी के धार्मिक माहौल पर थोड़ा नजर डालना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, उस समय के धार्मिक और राजनीतिक माहौल में अंतर करना कुछ हद तक कृत्रिम है। इसके बजाय धर्म और राजनीति आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। आप इसे विशेष रूप से तब देखेंगे जब रोमन सम्राटों को थोड़ा और करीब से देखने की बात आती है, और उन्होंने रोमन शासन की स्थापना और उसे बनाए रखने का काम कैसे किया। लेकिन अगर आप पहली सदी में रहते तो आपको जल्द ही पता चल जाता कि आपके अनुसरण के लिए कई धार्मिक / दार्शनिक विकल्प खुले थे। इसलिए ईसाई धर्म एकमात्र ऐसा धर्म नहीं था जो उभरा। यह कई अन्य धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों के साथ प्रतिस्पर्धा और उनके संदर्भ में उभरा। लेकिन फिर से ध्यान रखें कि उस समय राजनीतिक और ऐतिहासिक रूप से जो चल रहा था, उससे इन्हें अलग करना आसान नहीं है। मैंने उनमें से कई को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से कई बुनियादी हैं। फिर से मैं बहुत व्यापक ब्रश स्ट्रोक पेंटिंग कर रहा हूँ। मैंने आपके नोट्स में कुछ बुनियादी बातों को सूचीबद्ध किया है। पहला, प्लेटो की सोच से घिरा हुआ है। और फिर आप में से कुछ लोग प्लेटो के विद्वान और उनके लेखन के विद्यार्थी मुझसे कहीं बेहतर हो सकते हैं। लेकिन संक्षेप में कहें तो हमारे उद्देश्यों के लिए जो महत्वपूर्ण है, वह उन चीजों में से एक है जो प्लेटोनिक सोच ने पहली शताब्दी में बहुत से लोगों को दी थी, वह थी आत्मा और पदार्थ के बीच का द्वैतवाद, अर्थात भौतिक संसार को मूल रूप से सच्ची आध्यात्मिक वास्तविकता का केवल एक प्रतिबिंब, केवल एक छाया के रूप में देखा जाता था। तो जो महत्वपूर्ण था वह आध्यात्मिक वास्तविकता थी, और विभिन्न तरीके थे कि भौतिक वास्तविकता उसके अधीन हो जाएगी, यहाँ तक कि कभी कभी सच्ची वास्तविकता के प्रकाश में बदनाम और तिरस्कृत भी की जाती थी जो आध्यात्मिक थी। इसका परिणाम यह है कि उन शब्दों में सोचने वाले अधिकांश व्यक्तियों के लिए मोक्ष का अर्थ भौतिक शरीर से पलायन या भौतिक दुनिया से पलायन और सच्ची वास्तविकता को प्राप्त करना था, जो प्लेटोनिक प्रकार की सोच में, इस द्वैतवादी प्रकार की सोच, आध्यात्मिक थी। तो प्लेटो ने आत्मा और पदार्थ के बीच इस द्वैतवाद की विरासत को आगे बढ़ाया। और फिर जो वास्तव में महत्वपूर्ण था वह आध्यात्मिक था, आध्यात्मिक दुनिया और भौतिक दुनिया को केवल एक प्रतिबिंब के रूप में देखा गया था, केवल सच्ची वास्तविकता की छाया के रूप में। मैं तर्क देने जा रहा हूँ कि कई बार नए नियम के ऐसे खंड होते हैं जहाँ लेखक उस तरह की सोच पर प्रतिक्रिया करते प्रतीत होते हैं। एक तरीका यह है कि चाहे सचेत रूप से या नहीं, इसकी सोच प्लेटोनिक द्वैतवाद के कारण हो सकती है। यह एक तरीका है जो आज हमारी कुछ सोच में सामने आता है, हालांकि आप इसे उतना नहीं सुनते हैं। अक्सर ईसाइयों के रूप में हम आत्माओं की मुक्ति के बारे में बात करते हैं, या आप किसी की आत्मा को बचाने के बारे में सुनते हैं, आत्मा मनुष्य के सारहीन आध्यात्मिक हिस्से को संदर्भित करती है। जैसे कि भगवान को भौतिक शरीर या मानवता के भौतिक हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर प्लेटोनिक द्वैतवाद भौतिक से अधिक आध्यात्मिक पर जोर देता है। हम उसके बारे में और बात करेंगे। नया नियम कभी कभी उस प्रकार की सोच पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। एक दूसरे प्रकार का धार्मिक आंदोलन, ओह वैसे मैं इसे दिखाने जा रहा था, यह रोमन सम्राटों में से एक नीरो की प्रतिमा है। मैं रोमन शासन की हमारी चर्चा के दौरान यह दिखाने जा रहा था। लेकिन नीरो उनमें से एक था। वह ईसाइयों के प्रति अपेक्षाकृत क्रूर होने के लिए जाना जाता था। जैसा कि किंवदंती है, वह वही है जिसने रोम को जलाने के लिए ईसाइयों को दोषी ठहराया था। और यह भी हो सकता है, जैसा कि परंपरा है, प्रेरित पॉल की मृत्यु नीरो के शासन में हुई थी। और ऐसे कुछ नए नियम के दस्तावेज हो सकते हैं जो नीरोनिक शासन या नीरोनिक उत्पीड़न के तहत रहने वाले ईसाइयों को संबोधित करते हुए लिखे गए थे। लेकिन अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह एक स्टोआ है। ग्रीक शब्द स्टोआ एक ऐसा शब्द है जो मूल रूप से इन स्तंभों को संदर्भित करता है। वह एक स्टोआ है। इसलिए जब आप ग्रीक वास्तुकला की उन तस्वीरों को देखते हैं तो उनमें बड़े स्तंभ होते हैं, बरामदे और चीजों को सहारा देने वाले स्तंभ होते हैं, जिन्हें स्टोआ के नाम से जाना जाता था। और यह मुझे पहली शताब्दी में दूसरे प्रकार के धार्मिक / दार्शनिक विकल्प पर लाता है और इसे रूढ़िवाद के रूप में जाना जाता है। पुनः स्टोसिज्म ग्रीक शब्द स्टोआ से लिया गया है, जो इन स्तंभों या स्तंभों में से एक को संदर्भित करता है। और जैसा कि हम समझाते हैं कि यह क्या है, आप समझ जाएंगे कि क्यों। वास्तव में मैं इसे अब ज्यादा नहीं सुनता, लेकिन क्या आपने कभी किसी का जिक्र किया है या किसी को उदासीन कहा हुआ सुना है? कोई भी? ठीक है, आप में से कुछ के पास है। पिछली बार जब मैंने इस कक्षा को पढ़ाया था तो मैंने नहीं सोचा था कि किसी ने इसके बारे में सुना होगा, इसलिए आप अच्छा कर रहे हैं। वैसे भी जब हम किसी को उदासीन कहते हैं तो आमतौर पर उससे हमारा क्या मतलब होता है? यदि आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति उदासीन है या आप किसी को उसकी विशेषता के रूप में उदासीन कहते हैं तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है? क्या वे बहादुर हैं? हाँ, वे कुछ हद तक बहादुर हैं और विशेषकर विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहते हैं। तो पहली शताब्दी में स्टोइसिज्म के रूप में जाने जाने वाले आंदोलन ने मूल रूप से यह कहा, जो कुछ भी मौजूद है दुनिया में, जो कुछ भी मौजूद है वह पदार्थ है और भौतिक दुनिया के बाहर कुछ भी मौजूद नहीं है। हालांकि पदार्थ और भौतिक दुनिया एक प्रकार के दैवीय आदेश से जुड़ी हुई है जिसे लोगों के रूप में जाना जाता है, जो सटीक शब्द है जिसे जॉन अध्याय एक में यीशु मसीह को संदर्भित करने के लिए उपयोग करता है। लेकिन वही शब्द लोगों इस प्रकार की दिव्य आत्मा या विश्व आत्मा को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो रूढ़िवाद के अनुसार सभी भौतिक पदार्थों में व्याप्त है। और इसलिए इसका मतलब यह है कि संतोष की कुंजी, रूढ़िवादिता ने इस बात पर जोर दिया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, संतुष्ट रहें, और संतुष्टि की कुंजी बस यह महसूस करना है कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और बस चीजों को स्वीकार करना है और अत्यधिक भावनाओं में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए और अत्यधिक तरीकों से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि हम कहां पहुंचते हैं। आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि इसे रूढ़िवादिता क्यों कहा जाता है। एक स्तंभ जो वहीं खड़ा है वह स्थिर है। पहली शताब्दी में एक उदासीन व्यक्ति वह था जो चीजों को वैसे ही स्वीकार करता था जैसे कि चीजें थीं। उन्हें एहसास होता था कि वे नियंत्रित नहीं कर सकते, कि वहां जो कुछ भी था वह पदार्थ था, यह इस दिव्य या विश्व आत्मा से जुड़ा हुआ था, और उन्होंने चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वे थे उन्हें एहसास हुआ कि वे हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते और संतुष्टि की कुंजी बस इसे स्वीकार करना है, न कि अत्यधिक भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करना। इसलिए भौतिक दुनिया के साथ सद्भाव में रहें, बस अपनी परिस्थितियों के साथ सद्भाव में रहें और स्वीकार करें, यही रूढ़िवादिता सिखाती है। यदि आपको वह पसंद नहीं आया तो दूसरा धार्मिक विकल्प या कोई अन्य धार्मिक/दार्शनिक विकल्प, जिसे निंदकवाद के रूप में जाना जाता था, जो आपके नोट्स में सूचीबद्ध तीसरा धर्म है। निंदकवाद बहुत आम तौर पर बहुत ही मूल रूप से शायद बहुत सरल होता है। निंदक व्यक्ति को एक सरल और अपरंपरागत जीवन जीने के लिए कहता है। इसलिए संशयवाद एक अपरंपरागत जीवन विकसित करने का आह्वान था। इसने एक तरह से यथास्थिति को, जिस तरह से चीजें हैं, जिस तरह से चीजें थीं, उलट पुलट कर दिया। निंदकवाद यथास्थिति, विशेषकर धन की, बहुत आलोचनात्मक था। इसने मूल रूप से सिखाया कि आपको धन से इनकार करना है, आपको भौतिक आराम से इनकार करना है और बस एक बहुत ही सरल जीवन जीना है। वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यीशु की प्रवृत्ति संकी थी। निंदक से मेरा मतलब निंदक होना है, और वह है समाज की आलोचना करना, अपरंपरागत सरल जीवन, धन और दुनिया की सुख सुविधाओं का तिरस्कार करना। तो वह मूलतः संशयवाद था। फिर लोकप्रिय संस्कृति की बहुत आलोचना। कभी कभी इसका दायरा अधिक हल्के से लेकर अधिक उग्र अभिव्यक्ति तक हो सकता है, लेकिन यह एक तरह का संशयवाद था। सादा जीवन, अपरंपरागत जीवन अपनाएं, सुख सुविधाओं का त्याग करो, धन का त्याग करो। लोकप्रिय संस्कृति के आलोचक। एक अन्य धार्मिक/दार्शनिक विकल्प, जिसे जादू के रूप में जाना जाता है। और जादू से मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी को किसी डिब्बे में आधा काट दिया जाए या कुर्सी को तैरा दिया जाए या ताश के करतब दिखाए जाएं या ऐसा कुछ किया जाए। जादू से मेरा तात्पर्य मुख्य रूप से यही है। पहली शताब्दी में जादू, हालांकि रोमन दुनिया के कई संदर्भों में यह अवैध था, यह काफी व्यापक प्रतीत होता था। और जादू के संदर्भ में मैं जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह यह है। पहली शताब्दी में जादू कभी कभी सही सूत्रों का उपयोग करके देवताओं की शक्ति से छेड़छाड़ या आह्वान करने और उनका लाभ उठाने का एक तरीका था। या यह रूप ले सकता है, उदाहरण के लिए, राक्षसी प्राणियों को दूर भगाने का, व्यायाम करने का, या सही फॉर्मूले, सही मंत्रों और इस तरह की चीजों का उपयोग करके राक्षसी प्राणियों को बाहर निकालने का। इसलिए पहली शताब्दी में ग्रीको रोमन दुनिया में जादू काफी प्रमुख था। और मैंने आपको इसे एक उदाहरण के रूप में दिया है। यह उस चीज का संक्षिप्त रूप है जिसे जादुई पाठ के रूप में जाना जाता है। हमने वास्तव में कई प्रारंभिक पांडुलिपियों का पता लगाया है जिन्हें जादुई पाठ या जादुई पपीरी के रूप में जाना जाता है। एक पपीरी बस एक शीट थी। आपको थोड़ी पृष्ठभूमि देने के लिए, आप में से कुछ ने पुराने नियम में इसके बारे में बात की होगी, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन एक पपीरी मूल रूप से लेखन सामग्री का एक टुकड़ा था और यह से आया था एक पौधा, एक नरकट जो दलदली इलाकों में उगता है, और आप मूल रूप से इन चीजों को खोलकर एक लेखन पत्र तैयार करने के लिए उन्हें एक साथ चिपका देंगे। और हमारे नए नियम की बहुत सारी पांडुलिपियां, साथ ही इन जादुई ग्रंथों सहित कुछ अन्य प्रारंभिक पांडुलिपि लेखन इन पपीरी शीट्स पर पाए जाते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से सदियों से खोजा और संरक्षित किया गया है। लेकिन यह एक उदाहरण है। जाहिर तौर पर इन जादुई ग्रंथों में से एक का अंग्रेजी अनुवाद है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें कि यहां ये शब्द हैं जो आपको अजीब लगते हैं। ये वास्तव में ग्रीक शब्द हैं जिनका अर्थ अव्यक्त या अप्राप्य है, लेकिन वे विभिन्न देवताओं के नाम हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम को बार बार दोहराने से इसे सही क्रम में दोहराने से मुझे यकीन नहीं है कि वे उनका उच्चारण कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें अप्राप्य माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, देवताओं के देवता, परोपकारी, ग्रीक शब्द, ग्रीक नाम आप जो दिन और रात को निर्देशित करते हैं, इसके बाद इस देवता के नाम को व्यक्त करने के लिए दो और ग्रीक नाम आते हैं। फिर विचार यह था कि सही सूत्र का उच्चारण करके कोई व्यक्ति भगवान को बुला सकता है और भगवान को बुला सकता है, या कम से कम शायद कुछ उद्देश्यों के लिए भगवान की शक्ति का लाभ उठा सकता है। या फिर इसके समान अन्य पाठ भी हैं जहां राक्षसी को दूर करने या राक्षसों को बाहर निकालने आदि के लिए मंत्र या मंत्र हैं। कुछ उदाहरण जहां यह नए नियम में महत्वपूर्ण हो सकता है, यह पूरी तरह से संभव है। मेरी राय में भगवान की प्रार्थना की शुरुआत में मैथ्यू अध्याय 6 में हम सभी अनुभाग जानते हैं, स्वर्ग में हमारे पिता, आपका नाम पवित्र है, आपका राज्य आता है, आपकी इच्छा पूरी होती है जैसे स्वर्ग में है पृथ्वी पर, आदि आदि। जो हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं वह उससे ठीक पहले आता है, जहां यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, लेकिन वह उन्हें प्रार्थना करना सिखाते हैं बुतपरस्तों की तरह नहीं, जो बड़बड़ाते हैं और इसलिए सोचते हैं कि वे अपने भगवान का आह्वान कैसे कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि किस हद तक यीशु के मन में इस तरह की बात रही होगी। जादुई ग्रंथों में देवताओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिव्य नाम को बार बार दोहराया जाना, और इसलिए यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, लेकिन जादुई ग्रंथों की तरह इस तरह से आप अपने पिता के ईश्वर को अपनी ओर से कार्य करने के लिए नहीं बुलाते हैं, बस कुछ पैटर्न में उसके नाम को बार बार याद करके, जैसे कि आप किसी तरह से उसे हेरफेर कर सकते हैं आपकी ओर से कार्य करना। दूसरी बात यह है कि शायद पहली शताब्दी में जादू के प्रचलन को देखते हुए आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि जब यीशु घटनास्थल पर पहुंचे और राक्षसों को बाहर निकालना शुरू किया तो लोगों ने उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की होगी। उनके लिए इसे देखना और इन जादुई ग्रंथों के प्रकाश में और जादू की घटना के प्रकाश में देखना आसान रहा होगा। यहाँ एक अर्थ में बस एक और जादूगर है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसे जादूगर कहा है, लेकिन यहाँ एक और व्यक्ति है जो जादू का अभ्यास करता है, यानी बस जादुई मंत्र निकालता है, देवताओं की शक्तियों को जागृत करता है। यहाँ बस कोई है जो राक्षसी को बाहर निकालने के लिए आया है। तो आप शायद देख सकते हैं कि यह कैसे पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है कि कैसे कुछ लोगों ने यीशु को समझा होगा या उसे गलत समझा होगा जब वह राक्षसों को बाहर निकालने और चमत्कार करने के लिए आया था। इसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है कि इस तरह के लोग आम तौर पर धर्म या धार्मिक प्रथाओं में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही पहली शताब्दी में एक और दिलचस्प घटना थी जिसे दैवज्ञ के रूप में जाना जाता था। दैवज्ञ मूल रूप से एक निश्चित स्थान को संदर्भित करता है, जैसे कि एक गुफा या कुछ और जहां आप जा सकते हैं, और आमतौर पर इन दैवज्ञों में अक्सर एक पुजारी, एक महिला पुजारी होती है, और आप उस पुजारी के पास जाते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। हो सकता है कि आप जानना चाहते हो, उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप एक जनरल हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आप वह युद्ध जीतेंगे जो आप शुरू करने जा रहे हैं, या शायद आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, शादी करने जा रहे हैं, या क्या आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या आपको कहीं चले जाना चाहिए, या क्या आपको यह फसल लगानी चाहिए या वह फसल लगानी चाहिए। तो आप इनमें से किसी एक दैवज्ञ के पास जाएंगे और वहां ड्यूटी पर एक पुजारी होगा। सबसे प्रसिद्ध दैवज्ञों में से एक को डेल्फी का ओरेकल कहा जाता था। वास्तव में यदि आप उसे गूगल करते हैं तो आप उसके स्थान की एक तस्वीर देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि खंडहर। लेकिन डेल्फी का दैवज्ञ एक प्रसिद्ध दैवज्ञ था, और मुझे लगता है कि प्रत्येक महीने के सातवें दिन आप इस दैवज्ञ में जा सकते हैं, एक मंदिर की तरह और वहां ड्यूटी पर एक पुजारी होगा। आप उससे प्रश्न पूछेंगे और वह फिर भगवान से पूछेगी और उत्तर प्राप्त करेगी और आपको उत्तर देगी। कभी कभी प्रतिक्रियाएं बहुत अस्पष्ट हो सकती हैं, जैसे कि एक शक्तिशाली सेनापति युद्ध जीतने जा रहा है और आप सोचते हैं, ओह महान, तो मैं जीतने जा रहा हूँ, लेकिन शायद यह आपका जिक्र नहीं कर रहा था। इसलिए प्रतिक्रियाएं कभी कभी बहुत अस्पष्ट हो सकती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि आप फिर से सही सूत्र द्वारा आप देवताओं को बोलने और स्वयं को प्रकट करने और अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो दैवज्ञ काफी प्रमुख थे और आप ईश्वर से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनका लाभ उठा सकते थे। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। एक और धार्मिक विकल्प जो फिर से बहुत बहुत व्यापक है, मैंने इसे आपके पाठ्यक्रम में बहुत व्यापक तरीके से सूचीबद्ध किया है, यह बुतपरस्त धर्म है। पहली सदी के ग्रीको रोमन साम्राज्य का धार्मिक वातावरण बहुत बहुदेववादी था, अर्थात इसने असंख्य देवताओं को सहन किया। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब तक ईसाई धर्म को केवल एक अन्य प्रकार के यहूदी धर्म के रूप में देखा जाता था, पहली शताब्दी में इसे आम तौर पर सहन किया जाता था। जैसा कि मैंने कहा, हमें खुद को इस ढांचे से बाहर निकलने की जरूरत है, जहां हम देखते हैं कि ईसाइयों के लिए पूरे इतिहास में ईसाई हमेशा खतरे में रहते थे। उन्हें हमेशा छिपना पड़ता था और रोमन सेनाएं सभी शहरों से होकर गुजरती थीं और उन्हें सड़कों पर खींच लाती थीं। वह बहुत दुर्लभ था। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारा दबाव स्थानीय स्तर से आया। कभी कभी नीरो के तहत कुछ स्थानों पर दबाव अधिक तीव्र होगा, लेकिन ईसाइयों को सड़कों पर घसीटे जाने या अखाड़े में शेरों के सामने फेंक दिए जाने की बहुत सी कहानियां थोड़ी देर बाद आईं। लेकिन मैं उसके साथ कहां जा रहा था? ओह हाँ, ईसाई धर्म दिलचस्प है। जब तक इसे यहूदी धर्म की तरह सिर्फ एक अन्य धर्म के रूप में देखा जा सकता था, रोम को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन कठिनाई तब होती है जब इसे किसी अलग चीज के रूप में देखा जाने लगा और जब इसे वास्तव में एक विशिष्ट धर्म को चुनौती देने वाले के रूप में देखा जाने लगा, जिसने सीजर के प्रभुत्व को चुनौती दी। लेकिन पहली शताब्दी के ग्रीको रोमन विश्व में विभिन्न प्रकार के बुतपरस्त देवताओं और धर्मों को सहन करने की विशेषता थी, इसलिए वस्तुतः कोई भी शहर जहां आप पहली शताब्दी में रहते होंगे, वह आपको धार्मिक मान्यताओं के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता होगा। वास्तव में विभिन्न प्रकार के देवता थे। उर्वरता के देवता थे, न केवल बच्चे के जन्म के लिए बल्कि आपकी फसलों के लिए भी। आपके कार्य से जुड़े संरक्षक देवता थे, अर्थात काम या खेती में भी आपकी सफलता का श्रेय देवताओं को जाता है। तो उन देवताओं की पूजा करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के अवसर थे जिन्होंने आपकी भलाई के लिए प्रदान किया था। अधिकांश ग्रीको रोमन शहरों में विभिन्न प्रकार के मंदिर होंगे जिनमें आप विभिन्न कारणों से जा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो यह अधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह आर्टेमिस का मंदिर है। यह एशिया माइनर या आधुनिक तुर्की के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक था, जो पहली शताब्दी ईस्वी से थोड़ा पहले और उस समय के दौरान शुरू हुआ था। नए नियम के कुछ दस्तावेज ऐसे हो सकते हैं जिनमें इस मंदिर से जुड़ी स्थितियों को ध्यान में रखा गया हो। उदाहरण के लिए, अधिनियमों की पुस्तक में प्रेरित पॉल खुद को आर्टेमिस के मंदिर और वहां होने वाले धर्म के आसपास की स्थिति का सामना करते हुए पाता है। कुछ अन्य उदाहरण, यह कोरिंथ शहर में अपोलो का मंदिर है। फिर से वहां स्टोआ हैं, लेकिन वे कोरिंथ में भगवान अपोलो के मंदिरों में से एक के अवशेष हैं। यह इफिसस में देवी आर्टेमिस है। हम इफिसियों की पुस्तक के बारे में अधिक बात करेंगे, हालांकि मेरे पास उस पुस्तक के बारे में कहने के लिए कुछ अलग होगा। लेकिन इफिसस शहर देवी आर्टेमिस के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जो उर्वरता की देवता थी, जिसे आप उसके निर्माण के तरीके से बता सकते हैं। वह आर्टेमिस था। यह एक वेदी का चित्र है जो संभवतः किसी व्यक्ति के घर में पाया गया होगा। इसलिए न केवल ग्रीको रोमन शहर के केंद्र में विभिन्न मंदिरों में मंदिर में पूजा करने के अवसर थे, बल्कि आपके अपने घर में भी अक्सर छोटी निजी वेदियां होती थीं। और यह वह है जो मुझे लगता है कि वास्तव में किसी के घर से खोदकर पाया गया था। तो मेरा कहना यह है कि पहली शताब्दी में जब पूजा की बात आती थी तो आपके पास विभिन्न प्रकार के धार्मिक विकल्प होते थे। अक्सर अलग अलग शहर अलग अलग देवताओं के प्रति बहुत बहुलवादी और सहिष्णु होते थे। और फिर काम में या आपकी फसलों में या जो भी हो, आपकी सफलता के लिए अलग अलग देवता जिम्मेदार थे। और यह आशा की गई थी कि आप उनका आदर करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और उन्होंने जो कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। एक और धार्मिक विकल्प, मुझे लगता है कि यह आखिरी विकल्प है। ओह, यह ज़ियूस है, भगवान ज़ियूस की एक तस्वीर। पहली शताब्दी में एक अन्य धार्मिक विकल्प वह है जिसे ज्ञानवाद के रूप में जाना जाता है या जिसे ज्ञानवाद के रूप में वर्णित किया गया है। गनोस्टिसिज्म ग्रीक शब्द ग्नोसिस से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान। और आप देखेंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन वास्तव में ज्ञानवाद एक धार्मिक आंदोलन के रूप में पूर्ण विकसित ज्ञानवाद ऐसा कहा जा सकता है वास्तव में नए नियम के दस्तावेज तैयार होने के बाद दूसरी शताब्दी तक सामने नहीं आया था। फिर भी अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ज्ञानात्मक विचार वे विचार जो बाद में पूर्ण विकसित ज्ञानवाद में उभरे पहली शताब्दी में पहले से ही मौजूद थे। मूल रूप से ज्ञानवाद ने कुछ इस तरह कहा कि यह कुछ मायनों में प्लेटोनिक द्वैतवाद से मिलता जुलता था। हमने आत्मा और पदार्थ के बीच द्वैतवाद के बारे में बात की। ज्ञानवाद ने कहा कि मूलतः भौतिक संसार बुरा है। सबसे बुरी स्थिति में यह बुरा है। और वास्तव में बाइबल के ईश्वर ने भौतिक संसार का निर्माण नहीं किया। वह एक तरह से कमतर ईश्वर था जिसने पूर्ण विकसित ज्ञानवादी सोच में विद्रोह कर दिया था। लेकिन ज्ञानवाद कहता है फिर से आध्यात्मिक दुनिया वास्तविक दुनिया है, सच्ची दुनिया है और अच्छी है। भौतिक संसार बुरा है और इसलिए मोक्ष में भौतिक संसार की कैद से बचना और आध्यात्मिक अस्तित्व प्राप्त करना शामिल है। और जहां इसे इसका नाम ज्ञानवाद मिलता है वह मोक्ष है। मुक्ति उस गुप्त ज्ञान को प्राप्त करने से होती है जो कुछ विशिष्ट लोगों के पास होता है। इसलिए इसका शीर्षक ज्ञानवाद है। अब यह यहीं आता है। यह एक दस्तावेज है या यह एक टुकड़ा है, मुझे लगता है कि यह एक पपीरी शीट पर है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। यह उस चीज का एक टुकड़ा है जिसे थॉमस के ग्नोस्टिक गॉस्पेल के रूप में जाना जाता है, जो पहली शताब्दी में एक प्रसिद्ध लेखन है जो तकनीकी रूप से एक सुसमाचार नहीं था लेकिन दूसरी शताब्दी में निर्मित एक प्रसिद्ध लेखन था जो ग्नोस्टिक की गवाही देता है। विश्वास और ज्ञानात्मक सोच। यह विचार यह है कि मुक्ति एक गुप्त ज्ञान से होती है जो कुछ विशिष्ट लोगों के पास होती है और मुक्ति में भौतिक दुनिया से बच निकलना शामिल है। और थॉमस का यह गूढ़ ज्ञानवादी सुसमाचार मूल रूप से यीशु की शिक्षाओं का एक रिकॉर्ड है और यह यीशु को गूढ़ ज्ञानवादी विचारों और गूढ़ ज्ञानवादी मान्यताओं को सिखाते हुए चित्रित करता है। लेकिन फिर भी जबकि यह पूर्ण विकसित ज्ञानवाद दूसरी शताब्दी तक सामने नहीं आया था, बहुत सी सोच पहली शताब्दी में पहले से ही प्रचलित रही होगी। और इसलिए फिर से क्या यह संभव है कि नए नियम के कुछ दस्तावेज ग्नोस्टिक प्रकार की सोच का जवाब दे सकते हैं? कुछ ऐसे भी हैं जो आश्वस्त हैं कि वे ऐसा करते हैं। एक अंतिम धार्मिक विश्वास, और आप अपने नोट्स में देखेंगे कि मैंने धार्मिक विश्वासों को विभाजित कर दिया है। फिर यह थोड़ा कृत्रिम हो सकता है, लेकिन मैंने ग्रीक और रोमन दुनिया में धार्मिक मान्यताओं को धार्मिक मान्यताओं में विभाजित किया है, लेकिन फिर धार्मिक मान्यताएं या धार्मिक मान्यताएं यहूदी दुनिया में राजनीतिक आंदोलनों को खत्म कर देती हैं। आखिरी बात जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह सम्राट पूजा है, और यही यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली शताब्दी में राजनीति और धर्म धुंधले हो गए थे और इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। चर्च और राज्य में कोई अलगाव नहीं था, लेकिन इसके बजाय धर्म और राजनीति आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ग्रीको-रोमन साम्राज्य के बारे में यह निश्चित रूप से सच था। जैसे जैसे ग्रीको-रोमन साम्राज्य फैलता गया, यह विचार भी फैलना शुरू हो गया कि रोमन सम्राटों को जल्द ही देवताओं के रूप में या उनकी मृत्यु के बाद ही देवताओं के रूप में देखा जाने लगा। मरणोपरांत मृत्यु के बाद ही किसी सम्राट को देवता माना जाएगा या देवता माना जाएगा। हालांकि इस बात के कुछ सबूत हैं कि पहली शताब्दी के अंत में जीवित सम्राटों ने, भले ही उन्होंने इसकी मांग नहीं की थी, कम से कम देवता की प्रशंसा और वास्तव में पूजा की उपाधियां स्वीकार करना शुरू कर दिया था। इस बात के प्रमाण हैं कि सम्राटों में से एक, जो संभवतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखे जाने के समय शासन कर रहा था, सम्राट ने वास्तव में स्वीकार किया था, चाहे उसने इसकी मांग की हो या नहीं। निश्चित रूप से भगवान और यहाँ तक कि उद्धारकर्ता की उपाधि भी स्वीकार की थी, और इसलिए तब जो अक्सर चल रहा था वह यह था कि पहली शताब्दी में शायद यह अन्य देवताओं की पूजा के साथ साथ बड़ा हुआ था। स्वाभाविक था कि उसके संबंध में सम्राट की भी पूजा होती, तो बुतपरस्त देवताओं के कुछ मंदिरों के साथ वास्तव में कुछ सम्राटों के सम्मान में स्थापित मंदिर थे। मुझे लगता है कि यह अगली ऐसी ही एक तस्वीर है। यह डोमिनिशियन के मंदिर का खंडहर है। डोमिनिशियन वह सम्राट है जो पहली शताब्दी के अंत में रहता था और शासन करता था। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी गई थी तब संभवतः वह सम्राट था। फिर यह सम्राट डोमिनिशियन के मंदिर का खंडहर है, और इसलिए न केवल अन्य मूर्ति पूजक देवताओं से बल्कि आपसे सम्राट के प्रति भी निष्ठा रखने की अपेक्षा की जाएगी। वहां विभिन्न प्रकार के मंदिर थे। कुछ मंदिरों को वास्तव में सम्राट द्वारा स्वयं स्वीकृत और स्थापित किया गया था, लेकिन अधिकांश मंदिर वास्तव में सम्राट के सम्मान में बनाए गए थे, अर्थात सम्राट ने इसकी मंजूरी नहीं दी। शायद सम्राट ने इसके लिए धन देने में मदद की होगी या कम से कम इसे मंजूरी दी होगी, लेकिन अक्सर यह समुदाय का कोई धनी व्यक्ति होता था जो सम्राट के प्रति सम्मान दिखाने के लिए मंदिर का निर्माण करता था, जो उनकी शांति, उनकी सुरक्षा, उनकी भलाई, दुनिया का उद्धारकर्ता होने के लिए जिम्मेदार था, सच्चा भगवान और भगवान। इसलिए पहली शताब्दी में सम्राट की पूजा स्थानिक थी। अब जो आधुनिक तुर्की है, एशिया माइनर, उनमें से अधिकांश शहर, इफिसस जैसे प्रमुख शहर और कुछ अन्य शहर, थुआतीरा, कुछ शहर जिनके बारे में आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है, उनमें से बहुत से में एक कुछ थे, उन्होंने सम्राट के सम्मान में दो मंदिर भी बनवाए, और इसलिए आप पहली शताब्दी के इन शहरों में से एक में रहने वाले एक ईसाई के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, विशेष रूप से कभी कभी अपने व्यवसाय के संबंध में, आपसे सम्राट के सम्मान में भोजन या भोज जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद की जा सकती है। सम्राट की पूजा और निष्ठा दिखाने की सीमा, जिसके केवल यीशु मसीह ही पात्र थे। तो सम्राट की पूजा फिर से संभवतः अधिकांश भाग में शीर्ष पर लागू नहीं की गई थी। दूसरे शब्दों में अधिकांश भाग में सम्राट इधर उधर नहीं जा रहा था और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। यह आमतौर पर स्थानीय स्तर पर होता था। जिन लोगों ने सम्राट के सम्मान में मंदिर का निर्माण और रखरखाव किया, यह अकल्पनीय है कि आप फिर से शामिल होने से इनकार करके विद्रोह करेंगे। आप और आपका शहर नहीं चाहते कि यह माना जाए कि वे सम्राट के प्रति कृतज्ञता दिखाने में विफल रहे हैं। इसलिए एक ईसाई के रूप में उम्मीद करें कि आप निष्ठा प्रदर्शित करने में शामिल होंगे, यहाँ तक कि फिर से सम्राट की पूजा करने की सीमा तक। तो आप यह कठिनाई देखना शुरू कर सकते हैं कि इससे कुछ ईसाइयों को परेशानी हो सकती है। हम किस हद तक सम्राट की पूजा में संलग्न हो सकते हैं या सम्राट का सम्मान कर सकते हैं, फिर भी यीशु मसीह के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रख सकते हैं, या यह बिल्कुल भी संभव नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि न्यू टेस्टामेंट की कई पुस्तकें इस मुद्दे को संबोधित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए मैंने जो कहा है उसके आलोक में क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु की इस शब्दावली के बारे में क्या होगा? नए नियम में यीशु को बार बार प्रभु क्यों कहा जाता है? उसे अक्सर उद्धारकर्ता क्यों कहा जाता है? आप कहते हैं ठीक है, क्योंकि चर्च में हमें यही सिखाया जाता है और यीशु मसीह का वर्णन करने के लिए उपयोग करने के लिए यही सही भाषा है। या सुसमाचार शब्द के बारे में क्या? तथ्य यह है कि यह संदेश कि यीशु मसीह मानवता के लिए मुक्ति और पुराने नियम की पूर्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। नए नियम के लेखक अक्सर इसे सुसमाचार की अच्छी खबर कहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? खैर, एक कारण यह हो सकता है कि वे सभी शब्द भगवान, उद्धारकर्ता, भगवान और अच्छी खबर या सुसमाचार पहली शताब्दी में सम्राट द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य शब्द थे। सम्राट को अक्सर दुनिया के उद्धारकर्ता या भगवान और भगवान के रूप में माना जाता था। मेरी किताबों में से एक में एक सिक्के का चित्र है जिस पर डोमिनिशियन का चित्र है और उस पर उसे भगवान और भगवान कहा गया है। इसलिए उद्धारकर्ता, भगवान और भगवान सम्राट के लिए अक्सर लागू होने वाली उपाधियां थीं। अच्छी खबर शब्द का अनुवाद हम अंग्रेजी में गॉस्पेल के रूप में करते हैं। इस शब्द का प्रयोग अक्सर सम्राट के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए किया जाता था, जैसे कि सम्राट का जन्म। इसलिए यह महत्वहीन नहीं होगा कि नए नियम के लेखक उस शब्दावली का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने इसे मुख्य रूप से पुराने नियम से प्राप्त किया है, लेकिन वे यह भी जानते होंगे कि वे ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो रोमन साम्राज्य के लिए विध्वंसक है, कि यह सम्राट नहीं है जो सभी का भगवान है, यह सम्राट नहीं है जो दुनिया का उद्धार करता है, यह सम्राट का जन्म नहीं है, या यह सम्राट के जीवन के आसपास की घटनाएं नहीं हैं जो अच्छी खबर हैं, लेकिन अब यह भाषा यीशु मसीह पर लागू होती है जो सच्चे भगवान और भगवान सच्चे उद्धार करता है, और वह जो मोक्ष लाते हैं वह सच्ची अच्छी खबर है। इसलिए मुझे लगता है कि अक्सर नए नियम के दस्तावेज रोमन शासन और रोमन विचारधारा के विध्वंसक होते हैं। और फिर से ईसाई धर्म का उदय हुआ और रोमन शासन के संदर्भ में इसे जन्म दिया गया, और अक्सर लेखक इसे रोम के दावे की एक प्रकार की पैरोडी या उसके उत्तर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, ग्रीको रोम के संबंध में कोई प्रश्न? इससे पहले कि मैं चीजों के यहूदी पक्ष के बारे में थोड़ी बात करूँ, यहूदी प्रकार का धार्मिक / दार्शनिक / राजनीतिक विकल्प, इनमें से किसी ग्रीको रोमन से संबंधित कोई प्रश्न? हाँ, यह इस पर निर्भर करता है कि आप किससे बात करते हैं। क्या ज्ञानवाद को ईसाई धर्म से लिया गया माना जाता है? आम तौर पर मेरी राय में हाँ। मुझे लगता है कि यह काफी हद तक दूसरी सदी का आंदोलन था, और फिर बहुत सारे गूढ़ ज्ञानवादी दस्तावेजों का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि यीशु और प्रेरितों ने वास्तव में गूढ़ ज्ञानवादी विश्वासों और गूढ़ ज्ञानवादी शिक्षाओं को पढ़ाया था। अब जब हम यहूदी विकल्पों पर विचार करते हैं, तो मैं फिर से काफी व्यापक स्ट्रोक और व्यापक ब्रश स्ट्रोक चित्रित करना चाहता हूँ, और मैं उन्हें इस संदर्भ में देखना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जब आप अपने नोट्स देखते हैं तो मैंने यहाँ कई नारे सूचीबद्ध किए हैं जिन्हें आप देखेंगे। आइए टोरा का अध्ययन करें, आइए अलग हो जाएं, आइए समायोजित करें, वगैरह वगैरह। वे जो नारे हैं वे मेरे हैं। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि जिन लोगों को मैं इन श्रेणियों के अंतर्गत रखता हूं उनमें से किसी ने भी वास्तव में इसकी सदस्यता ली होगी या ऐसा कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इन समूहों ने जो सोचा होगा उसका सारांश है। लेकिन इनमें से अधिकांश समूह जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, यहूदी धर्म के भीतर इनमें से अधिकांश आंदोलनों को विदेशी शासन और उत्पीड़न की स्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित और देखा जा सकता है। विभिन्न समूहों ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया कि परमेश्वर के लोग होने का क्या अर्थ है। विदेशी प्रभाव के संदर्भ में इसराइल के रूप में ईश्वर के लोगों के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने का क्या मतलब है। फिर से याद रखें, मंदिर नष्ट हो गया है। पुराने नियम के वादों को पूरा करने के लिए दाऊद का कोई पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठा है। इसके बजाय अब सीजर रोम में सिंहासन पर है और वह सभी बुतपरस्त धर्मों और प्रभाव के अलावा हर चीज पर शासन कर रहा है। प्रश्न यह है कि परमेश्वर के लोग होने का क्या अर्थ है। मैं अपनी पहचान कैसे बनाए रखूं? उस तरह की स्थिति में हम परमेश्वर के लोगों के रूप में अपनी पहचान कैसे बनाए रख सकते हैं? यहूदी धर्म के भीतर इन विभिन्न समूहों या आंदोलनों को आंशिक रूप से उस प्रश्न और विभिन्न प्रतिक्रियाओं के जवाब के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अब जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि संपूर्ण यहूदी धर्म पहली शताब्दी के सभी यहूदियों को लेना और उन्हें इन पार्टियों में विभाजित करना गलत होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक सामान्य यहूदी धर्म है जिससे सभी संबंधित हैं, अधिकांश लोग इससे संबंधित हैं, लेकिन इसके भीतर कोई भी विभिन्न पार्टियों, विभिन्न आंदोलनों और फिर रोमन शासन के संदर्भ में दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं की पहचान कर सकता है। और विदेशी उत्पीड़न और तथ्य यह है कि भगवान के वादे विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। वे उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? खैर, सबसे पहले आइए टोरा का अध्ययन करें। यह शायद इतना अधिक नहीं है, शायद विदेशी उत्पीड़न की प्रतिक्रिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से पहली शताब्दी में यहूदी धर्म की एक अभिव्यक्ति की विशेषता है और इसके द्वारा मेरे मन में वह लेबल है जो आपको शास्त्रियों के सुसमाचारों में कुछ स्थानों पर मिलता है। वे पुराने नियम के एक प्रकार के पेशेवर छात्र या विद्वान थे जिनका काम सामान्य लोगों के लिए पुराने नियम की नकल करना, उसकी व्याख्या करना था। एक बार फिर मैं यह सुझाव नहीं देना चाहता कि ये सभी श्रेणियां परस्पर अनन्य हैं। उनमें से कुछ हैं, लेकिन संभवतः उनमें से कुछ के बीच कुछ ओवरलैप है। लेकिन शास्त्री, जैसा कि उनका नारा कह सकता था, हमारा नारा है आइए टोरा का अध्ययन करें। वे पुराने नियम का अध्ययन करने और परमेश्वर के लोगों के लिए पुराने नियम की व्याख्या करने में व्यस्त थे। संभवत शास्त्री वही हैं जो 70 ईस्वी के बाद, जब मंदिर फिर से नष्ट हो गया, रब्बी कहलाए। लेकिन दूसरा समूह दूसरा नारा है, चलो अलग हों। यहूदी धर्म के भीतर एक ऐसा समूह रहा होगा जो अपना नारा चलो अलग हों का दावा कर सकता था। यह समूह व्यक्तिगत एवं नैतिक शुचिता में रुचि रखता था। वे मोज़ेक कानून के कड़ाई से पालन में रुचि रखते थे। वे काफी अच्छे थे और समाज में उनका बहुत सम्मान था और वे अत्यधिक प्रभावशाली भी थे। और फिर उन्होंने पहली शताब्दी में रोमन शासन के तहत स्थिति का जवाब शुद्धता का पालन करके, कानून का गहन पालन करके, दूसरों को ऐसा करने की शिक्षा देकर और मूसा के कानून का पालन करके नैतिक शुद्धता के द्वारा दिया। और फिर वे बहुत प्रभावशाली थे और अधिकांशतः अत्यधिक सम्मानित थे। क्या किसी को पता है कि मेरे मन में कौन सा समूह है? बाइबल का नाम फरीसी वह समूह होगा जो कह सकता था, चलो अलग हो जाएं। अर्थात कानून का पालन करके नैतिक शुद्धता का पालन करना। फिर फरीसियों के बारे में और भी बातें हैं जो हम कह सकते हैं। हम शायद उनके बारे में तब और अधिक बात करेंगे जब हम गॉस्पेल पर पहुंचेंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि रोमन शासन के बीच समाज का परिवर्तन और नवीनीकरण कानून के पालन और व्यक्तिगत शुद्धता के माध्यम से होगा। वह फरीसी हैं। वे रोमन विरोधी थे। फिर उन्हें यह तथ्य पसंद नहीं आया, जाहिर है कि रोम शासन कर रहा था। लेकिन वे ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे जो दूसरे समूह ने किया। हम इसे एक मिनट में देखेंगे। हालांकि उनमें से कुछ ने किया और थोड़ा सा ओवरलैप भी है। उनमें से कुछ ने ऐसा किया, लेकिन उनमें से सभी दूसरे समूह के बराबर आगे नहीं बढ़े, जिस पर हम एक क्षण में नजर डालेंगे। एक अन्य समूह का नारा हो सकता था, आओ समायोजित करें। अर्थात यह समूह थोड़ा अधिक रोमन समर्थक हो गया। वे ग्रीको-रोमन दुनिया में यथास्थिति बनाए रखने और विशेष रूप से रोमनों को परेशान न करने के लिए अधिक उत्सुक थे। वे आम तौर पर फरीसियों के साथ मतभेद में थे। फिर उनमें मूल रूप से समाज के अधिक संपन्न और विशिष्ट सदस्य शामिल थे। और फिर जब तक उन्हें एक आम दुश्मन नहीं मिल गया, तब तक वे फरीसियों के साथ बड़े पैमाने पर मतभेद में थे। और फिर वे फरीसियों के साथ सहयोग करने के लिए काफी इच्छुक लग रहे थे। और वह शत्रु यीशु मसीह का व्यक्ति था। और इस समूह के फरीसी इस आदमी से छुटकारा पाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार थे। मेरे मन में कौन सा समूह है? सदूकी। और भी चीजें हैं। सबसे आम और लोकप्रिय बात यह है कि उन्होंने पुनरुत्थान से इनकार किया। फिर हो सकता है कि यह पूर्ण बहाली, दुनिया के परिवर्तन वगैरह के संदर्भ में सोचकर यथास्थिति को परेशान न करने की उनकी इच्छा के साथ चला गया हो। लेकिन फिर सदूकी, एक प्रकार के अभिजात वर्ग, समाज के संपन्न सदस्य, यथास्थिति बनाए रखने से संतुष्ट थे और रोमन सरकार को परेशान नहीं करते थे। एक अन्य समूह जो दूसरे समूह के समान है, चलो अलग हों, एक अन्य समूह का नारा हो सकता है, चलो पीछे हटें। अर्थात मैं एक ऐसे समूह के बारे में सोच रहा हूं जिसने वास्तव में न केवल रोमन शासन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि उन्होंने जो देखा और सोचा वह यरूशलेम में चल रही पूजा का भ्रष्टाचार था। वे सिर्फ रोम से ही परेशान नहीं थे, वे अन्य यहूदी आंदोलनों से परेशान थे। उन्होंने सोचा कि यरूशलेम और मंदिर भ्रष्ट हैं। इसलिए इस समूह ने फैसला किया कि इसके जवाब में वे वास्तव में पीछे हट जाएंगे और एक तरह से अपना संप्रदाय, अपना समुदाय स्थापित करेंगे और शुद्धता का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे। और ऐसा करने से वे फिर दुनिया में भगवान के दर्शन की शुरुआत करेंगे, जहां भगवान अपने मंदिर, सच्चे शुद्ध मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे। फिर यरूशलेम में जो है वह भ्रष्ट है, वे इससे असंतुष्ट हैं। इसलिए शारीरिक रूप से अलग होकर अपना स्वयं का समुदाय स्थापित करके, सख्त पालन और पवित्रता करके, फिर भगवान एक दिन वापस आएंगे, अपना राज्य स्थापित करेंगे और मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे। यह समूह, क्या किसी को पता है कि मेरे मन में कौन सा समूह है? एसेंस या कुमरान समुदाय। इस बारे में कुछ बहस है कि क्या वे दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन कुमरान समुदाय के लिए हम उनके बारे में थोड़ा और बात करेंगे। मूल रूप से कुमरान समुदाय, जो मेरी अगली स्लाइड है, मृत सागर के किनारे समुदाय के कुछ खंडहर हैं। आप उन्हें मृत सागर स्क्रॉल के उल्लेख से अधिक लोकप्रिय रूप से जानते हैं। कुमरान समुदाय एक संप्रदाय था जिसने फिर से अलग होकर एक समुदाय की स्थापना की। आप पृष्ठभूमि में मृत सागर देख सकते हैं। उनके पास बहुत सख्त नियम थे कि कौन अंदर जा सकता है। और समुदाय में प्रवेश पाने के लिए आपको कई चरणों से गुजरना पड़ता था। फिर वे पुराने नियम के कानून सप्त के पालन पर जोर दे रहे थे, लेकिन फिर वे अपने बारे में सोचने लगे। उनके पास अपना कोई मंदिर नहीं था। वे स्वयं को उस दिन तक एक मंदिर के रूप में सोचते थे जब तक कि भगवान स्वयं उनके बीच में एक नवीनीकृत और भौतिक मंदिर, एक मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे। तो यह कुमरान समुदाय था जिसने खुद को अलग कर लिया और शुद्धता बनाए रखने और भागने के लिए खुद को अलग कर लिया, मूल रूप से दुनिया और समाज के भ्रष्टाचार से बचने के लिए और यरूशलेम में जो कुछ चल रहा था उससे अपने असंतोष से बचने के लिए। ये गुफा की तस्वीरों में से एक है, शायद तेड उसे पहचानता है। मुझे लगता है कि वह गुफाचार है। ठीक है, उसके ऊपर अनेक गुफाएं हैं। मैं आपको समुदाय के अवशेषों की एक तस्वीर दिखाता हूँ। इसके ऊपर की चट्टानों पर मृत सागर स्क्रॉल, जिसे हम मृत सागर स्क्रॉल कहते हैं, कई गुफाओं में पाए गए थे। यह गुफा संख्या 4 है। यदि आपने कभी मृत सागर स्क्रॉल पढ़ा है तो आप देखेंगे कि स्क्रॉल को 4Q या 11Q, 1Q जैसे नाम दिए गए हैं। वे संख्याएं 4 और 11 केवल गुफाओं की संख्याएं हैं। मुझे नहीं लगता कि कुमरान समुदाय ने उन्हें गिना है। ये सिर्फ वो संख्याएं हैं जो हमने दी हैं। तो यह उन गुफाओं में से एक है जिनके बारे में कई दस्तावेज मौजूद हैं। यह एक विशेष रूप से उपयोगी गुफा थी जिसमें कई दस्तावेज सामने आए, जिनमें से कई इस समुदाय की स्थापना की गवाही देते हैं। फिर उन्होंने खुद को सच्चे इज़राइल, भगवान के सच्चे लोगों के रूप में देखा और उन्होंने खुद को अलग करके और कानून का पालन करके उस स्थिति और पवित्रता को बनाए रखा। मुझे लगता है मेरे पास एक और है। यह वास्तव में शायद की एक तस्वीर है, मुझे भी यकीन नहीं है कि यह क्या है। मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा दस्तावेज है। यह स्क्रॉलों में से एक के कुछ अंश हैं। बहुत सारे स्क्रॉल इस तरह दिखते हैं। जाहिर तौर पर यह उनकी उम्र है। उनमें से बहुत सारे खंडित रूप में हैं और फिर उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह उन स्क्रॉलों में से एक का उदाहरण है जो गुफाओं में से एक से निकले थे। फिर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि वह कौन सा था। और यदि आप रुचि रखते हैं तो हर कोई बाहर जाकर इसकी जांच न करे। मृत सागर स्क्रॉल के कई अंग्रेजी अनुवाद हैं, आप उन्हें स्वयं पढ़ सकते हैं। तो ये मुख्य थे यहूदी धर्म, राजनीति और दार्शनिक आंदोलनों के संबंध में मुख्य 4 विकल्प। यह अजीब लग सकता है कि मैं उन्हें दार्शनिक कहूंगा, लेकिन इतिहासकार जोसेफस इन सभी को दर्शन कहते हैं। लेकिन फिर से आप देख सकते हैं कि विभिन्न यहूदी धार्मिक आंदोलन भी अक्सर अपने राजनीतिक विचारों से बंधे थे, वे रोम को भी कैसे देखते थे। एक अंतिम विकल्प और वह यह है कि एक और समूह हो सकता है। फिर से यह वह समूह है जो संभवतः है, अन्य सभी से अलग समूह के रूप में अलग अलग रेखाएं खींचना मुश्किल है। लेकिन एक अन्य विकल्प ईश्वर और कानून के प्रति किसी की धार्मिक भक्ति और विश्वास की एक और अभिव्यक्ति और इससे रोम के प्रति आपकी प्रतिक्रिया में कैसे फर्क पड़ता है, इसका उदाहरण उस समूह में दिया गया जिसका नारा हो सकता था, आओ लड़े। और इसलिए मूल रूप से उनका विचार था, फिर से आपको याद रखना होगा कि भगवान ने इसराइल को वह कानून दिया है जिसका उन्हें पालन करना है और भगवान ने यह भी वादा किया है कि वह सिंहासन पर एक राजा स्थापित करेगा, डेविड की पंक्ति में एक राजा सिंहासन। अब इसका खंडन एक विदेशी शासक द्वारा किया गया है, इस मामले में रोमन साम्राज्य का सीजर सिंहासन पर बैठा है। तो उनकी प्रतिक्रिया यह है कि यदि भगवान ने हम पर शासन करने वाले राजा का यह वादा कानून का पालन करने और हमारी पवित्रता बनाए रखने की इच्छा से किया है, तो उनकी प्रतिक्रिया थी, चलो लड़े, अर्थात चलो रोम के विरुद्ध हथियार उठाएं। ये मूलतः पहली सदी के आतंकवादी थे। आइए रोम के विरुद्ध हथियार उठाएं। और ऐसा करने पर उन्होंने सोचा कि मूल रूप से भगवान शामिल होंगे और उन्हें रोम पर विजय दिलाएंगे और वे उसका राज्य स्थापित करेंगे। मेरे मन में कौन सा समूह है? कट्टरपंथियों। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल में स्पष्ट रूप से उत्साही प्रवृत्ति थी। पॉल स्वयं हमें बताता है कि जब मोज़ेक कानून के प्रति समर्पण की बात आई तो वह अपने साथियों से कहीं आगे निकल गया। वह हमें बताता है कि उसने यीशु मसीह के चर्च पर हिंसक अत्याचार किया। पॉल पहली सदी के आतंकवादी का एक अच्छा उदाहरण था। वह कानून के पालन में इतना निष्ठावान था कि वह उस चीज को भी नष्ट करने की कोशिश करता था जिसे वह अपने पैतृक धर्म यहूदी धर्म के लिए खतरा समझता था। तो फिर से ये कुछ विकल्प हैं। वे वायुरोधी श्रेणियां नहीं हैं। ऐसे अन्य विकल्प भी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिर मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचें कि प्रत्येक यहूदी को इन श्रेणियों में से एक में रखा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली शताब्दी में एक सामान्य यहूदी धर्म था और फिर इन विभिन्न समूहों से संबंधित कई लोग भी थे। लेकिन एक बात जो आप देख सकते हैं, उसे समझना महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यहूदी धर्म की इन सभी अभिव्यक्तियों का एक तत्व एक साथ जुड़ा हुआ है जिसे हम यहूदी धर्म कह सकते हैं, यानी ईश्वर के प्रति वफादारी, उसकी आज्ञा मानने की इच्छा प्रदर्शित करना, कानून मूसा के कानून को बनाए रखने के लिए, भगवान के लोगों के रूप में विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए। एक ही समय में अभिव्यक्तियों की विविधता थी, इस हद तक कि कुछ लोग यहूदी धर्म के बजाय यहूदी धर्म शब्द के बहुवचन को पसंद करते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि ईसाई धर्म विभिन्न प्रकार के धार्मिक आंदोलनों के संदर्भ में, सहयोग में और कभी कभी संघर्ष में उभरा। यह डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन द्वारा लिखित न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों पर व्याख्यान 3।